अगर मेरे गुनहगार बंदों को पता चले कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मेरे वो गुनहगार बंदे जिनके नामा अमाल में एक भी नहीं है, जिनकी जिंदगी गुनाहों से मुलव्वस है, नामा अमाल में रोजा नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, कुछ नहीं, अगर मेरे इन गुनहगार बंदों को पता चले मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तो मारे मोहब्बत के उनके बदन के जोड़ अलग हो जाए। जब मेरे भाई अल्लाह तआला अपने गुनहगार बंदे से इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे जो दुनिया में रहकर अल्लाह तबारक व तआला की मर्जियात वाले जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह तआला उसे कितनी मोहब्बत करता होगा। एक मरतबा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ सफर में थे, एक औरत को देखा वो तंदूर जला के बैठी है, तंदूर जला के, तंदूर समझते हो चूल्हा, और उसका छोटा सा बच्चा करीब में है। जैसे बच्चा तंदूर के करीब आता है, चूल्हे के करीब, आग के लिपटों को देखकर तो माँ खड़ी होती है और बच्चे को भी अलग करती है, जुदा करती है, ताकि मेरे बच्चे को आग की लिपट लग जाए। उसने बार बार किया, जब वो अपने तंदूर में रोटी पकाने से फारिग हो चुकी तो हुजूर की खिदमत में आई, आपका काफिला था पड़ा हुआ था जगह पर, या रसूल अल्लाह कि मेरा छोटा सा बच्चा मैं रोटी पका रही हूँ तंदूर के पास, वो मेरा बच्चा बार बार आग की तरफ आ रहा है, तो मेरे दिल में बच्चे की इतनी मोहब्बत है कि मैं बच्चे को बार बार मुझे उठना पड़ता है और मैं अपने बेटे को आग की लिपटों से बचाता हूँ ताकि मेरे बेटे को आग न लग जाए। अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला खुदा है, तो क्या अल्लाह तआला अपने बंदों को जहन्नम की आग में भेजेगा? आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला ने सर झुका कर देर तक रोते रहे, अब मेरा ना ना नहीं, अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम में कभी नहीं भेजेगा, हाँ उस बंदे को भेजेगा जो रात की तन्हाई उसके नापाक हो जाए और जो अपने गुनाहों पर मुसिर रहे, गुनाहों पर इसरार करने वाले को अल्लाह जरूर अदा देगा, वरना अल्लाह अपने बंदे को कभी अदा नहीं देगा। अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार है, ये मैं आदम अल्लाह फरमा मेरे बंदे भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ, फमी हक की कुल्ली मुहिब्बा, मेरे हक की कसम तू भी मुझसे मोहब्बत करने वाला बन जाए, ये मैं आदम इन दकर तनी दकर तो, जब तू मुझे याद करता है तो मैं तुझे याद करता हूँ, वही नसीब का भी जिक्र करता हूँ, लेकिन जब तू मुझे भूल जाता है तब भी मैं तुझे याद करता हूँ, वक्त पर खाना खिलाता हूँ, वक्त पर पानी पिलाता हूँ, वक्त पर तेरी जरूरत को पूरा करता हूँ, वमा कान रब्बुका नसीया, आपका रब अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। ये अल्लाह तबारक व तआला का अपने बंदों के साथ ताल्लुक है कि नाफरमान को भी रोजी मिल रही है, फरमाबरदार को भी रोजी मिल रही है, अगर से रोजी देने में फर्क है, बरकत वाली रोजी, परेशानी वाली रोजी, लेकिन मुकद्दर का रिस्क अल्लाह ताला हर एक को दे रहा है, फरमाबरदार को भी नाफरमान को भी। ये हमारे मजमा के पढ़े लिखों का मजमा है, जिनको दुनिया भी लोग दुनिया की जबान में पढ़ा लिखा तबका प्रोफेशनल मजमा, क्योंकि मजमा के इंसान झगड़ा नहीं करता क्योंकि पढ़ा लिखा है, जाहिर नहीं है, पढ़े लिखे मजमे का समाज में माशरे में एक वैल्यू है कि मजमा समझदार होता है, संजीदा होता है, बार बार में जवाब नहीं बनता, बार बार में झगड़ा नहीं करता, उसमें बर्दाश्त करने की ताकत होती है। पढ़ा लिखा मजमा एक नादान और एक जाहिल जो छोटी छोटी बातों को बड़ी कर लेता है, झगड़े पर उतर जाता है, जबान से गाली निकाल देता है, पढ़ा लिखा तबका उसकी जबान से कभी गाली नहीं आती, तो वो समझदार हो, समझदार मजमा, डॉक्टर्स का मजमा, वकीलों का मजमा, इंजीनियर्स का मजमा, टीचर्स का मजमा, स्टूडेंट को कभी टीचर सख्ती तो करता है लेकिन कभी गाली नहीं होता, इसलिए कि इल्म देने में हमदर्दी जरूरी है। इल्म देने में क्या जरूरी है? हमदर्दी, सीना व सीना नॉलेज होता है, डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि अपने पेशेंट के साथ नरमी करे, अपने पेशेंट को इस तरह समझे जिस तरह अपना घर का पेशेंट हो। ये डॉक्टर की खैरखाई है। एक डॉक्टर क्लिनिक खोलकर बैठा है और उसका बच्चा पेशेंट बन के आया, उसका भाई बन के आया, उसकी बहन बन के आया, तो डॉक्टर का पूरा तरीका बदल जाता है कि मेरे घर का पेशेंट है, मेरे घर का दर्दी है। पूरे स्टाफ को एक्टिव करता है, मैं इसकी तरफ बराबर खबर रखू। इसी तरह डॉक्टर हर आने वाला मुसलमान को अपने घर का फर्द और अपने घर का मेंबर समझकर उसकी तीमारदारी करे, उसके साथ इलाज करे। ये डॉक्टर का दिन है। इल्मुल तीब, तीब का इल्म ये अंबिया अलैहिस्सलाम के पास भी था और सहाबा के पास भी था। जैसी दुनिया की तरक्की होती रहेगी, साइंस की दुनिया में नाम बदलते रहेंगे, दवाओं के नाम बदलते रहेंगे, असल तो जो दवा है रूहानी जिस्मानी अमराज की वो जड़ी बूटी है। उसका इलाज हमारे बड़े और हमारे असलाब जाते थे। और सहाबा के जमाने में कभी तो कोई बीमार होता ही नहीं था। हाँ, बीमार सहाबा हुए हैं, लेकिन मदीना में कोई डॉक्टर नहीं था। इमाम शेख सादी ने अपनी किताब गुलिस्ता में लिखा है, एक डॉक्टर ने मदीना में क्लिनिक खोली। चलिए देखो आवेद ने, आवेद ने परेशान कि क्लिनिक खाली को आता है, फरमाया यार वो आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ लोग खाने के बहुत संभल के खाते हैं। अरे खाना खाने के बाद पानी मत पियो। हालांकि खाना खाने के बाद पानी पीने की तरकीब है शरीयत में, इतना खाना मत खाओ कि पानी की जगह न रहे, फिर पानी रखने की तरकीब है। एक हिस्सा खाने का है, एक हिस्सा पानी का है, तो पानी का हिस्सा क्यों कहा कि मैं खाने के बाद पानी पीऊं। आदमी एक हिस्से का खाना खा लेगा और एक हिस्से का आदमी खाली जगह रहेगा हवा के लिए, तो आदमी को पानी की जरूरत पड़ेगी। खाना इतना खा लेगा तीन को पूर कर लेते, पानी की जगह पर भी खाना, हवा की जगह पर भी खाना, अब तुम पानी पीओगे तो नुकसान। सहाबा किराम पनीर खा लिए थे। ऐसे जगह हम पुराने बैठे हुए थे, एक अरब की जमात आई और अरब की जमात ने खाने का मुजाकरा किया। खाने के आदाब जो हमारे जमातों में होते हैं, तो खाने के आदाब बताने के बाद हजरत शेख ने कहा ये अदब बाकी है कि जबकि के कम खाना भी सुन्नत है। क्या कहा? ये कम खाना भी सुन्नत है। और एक सबसे बदतरीन बीमारी आयशा की रिवायत है, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद पेट भरकर खाने की आई है। पेट भरकर खाने से उलूम कच्चे होते हैं और भूखा रहने से इल्म अल्लाह ताला आसमानों से इल्म देता है। आदमी की इस्तेदाद, आदमी की अकल मजबूत होती है। कम खाने से आदमी का इबादत में निशा पैदा होता है और ज्यादा खाने से आदमी के आधा सो जाते हैं। जब आधा सो जाते हैं तो आदमी को नींद आ जाती है, उसको इल्म नहीं मिलता। अब टीचर की जिम्मेदारी है कि अपने स्टूडेंट को सही इल्म दे। ड्यूटी पूरी नहीं करना, खिदमत करनी है, खिदमत। और अपने को छोटा बन के बच्चों को, एक माँ जिस तरह अपने बच्चे को पिलाती है ना, इस तरह टीचर अपने स्टूडेंट को पिलावे, उलूम पिलावे, उलूम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के उलूम सहाबा को पिलाए, कुरान के उलूम पिलाए सहाबा को, अजीब तरीके से पिलाए सहाबा को, सिद्दीक अकबर को, उमर फारूक को उलूम पिलाए। लेकिन टीचर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, और आपस में मामला होता है एक दूसरे की काटने का। कभी अपने को बड़ा ना समझे कि अल्लाह का बड़ा करम माने कि अल्लाह ने मुझे क्लिनिक पर बिठाया है और तुम्हारा कैशन बादशाह भी होता है, मालदार भी होता है, गरीब भी होता है, तो हम हर एक के साथ आधी तरह बर्ताव करें, आधी तरह बर्ताव करें। एक बार जब सारे शरम अपने कौम में तकरीर कर रहे हैं, अपने कौम में बेहतरीन बात की तकरीर, बात बयान जादू होते हैं, आदमी के दिल पर जादूगर ने कहा इन्न मिनल बयान नसीहा, کہ بیان جادو کی طرح ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بیان سے پورا مجمع رو پڑا، لوگوں کے دل ہل گئے. تو یہ اٹھا اور کہا، حضرت کیا دنیا میں آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ مختلف تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، دنیا میں آپ سے بھی بڑا کوئی عالم کچھ بلند پوچھ کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ یوں نہیں کہا کہ میں ہوں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہے. اللہ کو یہ بات ناپسند آئی. حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں سب سے بڑے عالم تھے، اولو العزم پیغمبر، جلل القدر پیغمبر، کلیم اللہ، تورات میں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے، مجھے پتا نہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے. خاموش رہنا اس میں تھوڑا اس بات کا اشارہ تھا کہ میں ہوں، میں ہوں. اللہ نے فوراً کہا، موسیٰ تم سے بھی بڑا عالم دنیا میں سمندر کے ملنے کے پاس، جو سمندر کا نام ہوتا ہے سنگم مجمع بحرین، بھائی ایک بہت بڑا عالم ہے کہ بعض چیزیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حقیقی مربی ہے. جب یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام تو بالکل اللہ کے لیے، اللہ میں جاؤں کا علم حاصل کر دیں، آپ مجھے جگہ بتا دیں، میں علم حاصل کرنے جاؤں گا. اور ام دیا حکم، زندگی میں پوری ہو جائے گی، زندگی میں وہاں لگا دوں گا اس مولانا کی ملاقات کے لیے، اس نبی کی. برسا حقوق تعلیم میں غیر منقطع زبان، جس زمانے کی کوئی حد نہ ہو، برسوں گزر جائیں گے چلتے 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 علم کی تلاش میں، لیکن میں نہیں ٹھہروں گا، چلتا رہوں گا جب تک مجھے میری منزل نہ مل جائے. تو اللہ کا تم پتہ بتا دے ایڈریس، تاکہ میں وہاں جا کر علم حاصل کروں. اللہ نے کہا، موسیٰ سمندر لے، زمبیل لے لو زمبیل، اور زمبیل میں مانگور کی مچھلی لے لو، مانگور کی نہیں مچھلی لے لو، یا مچھلیاں بہت کھائی، بہت کھائی آپ نے، اب مچھلی لو مچھلی، مری ہوئی مچھلی، زمبیل لے لو مچھلی، اور یہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر چلی جا رہی وہاں میرے نیک بندے کی ملاقات کی جگہ ہے، تمہارا اسٹیشن ہے. موسیٰ علیہ السلام نے خالد ساتھ لیا، جن کا نام یوسف ابن نون علیہ السلام، جو بعد میں اسرائیل کے پیغمبر بنے. وہی قول موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. ضرور چلے خالد اور موسیٰ علیہ السلام، کہ لمبا زمانہ بھی گزرتا رہے گا، میں تھکوں گا نہیں، مقصد پر پہنچوں گا. دونوں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، ایک چٹان ہے چٹان، اور چٹان پر جا کر سو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو نیند آئی، یوشع ابن نون جاگتے رہے، تو زمبیل میں حرکت ہوئی، اور زمبیل میں مچھلی مچھلی وہ زندہ ہوئی، اور زندہ ہو کے سمندر کا راستہ پکڑا، اور کس طرح چلی، وَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، سمندر میں سرنگ بنا کر چلی. ہوتا نا وہ سرنگ، ہوتی سرنگ جسے گاڑیاں چلتی ہیں، سمندر میں یوں کر کے سرنگ بنایا اور چلتی چلتی سمندر میں چلی گئی سرنگ بنا کر. یوشع انہوں نے دیکھا پورا منظر، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سوئے ہوئے ہیں، جب جانے کے تک ان کو یہ بات بتا دوں گا، ان کو اٹھانا اچھا نہیں ہے، لمبا سفر تھا. موسیٰ علیہ السلام اٹھے، یوشع انہوں نے بول دے، پھر 24 گھنٹہ چلے علم کی تلاش. ایسا میں ڈاکٹر بن چکا ہوں تو آگے ابھی میں اپنے ڈاکٹر کے فنون پکڑوں، ماہر ڈاکٹر بنوں، تاکہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے، ایک ایک دوا کو میں تلاش کروں. میں ٹیچر بنوں کہ میں زیادہ اسٹڈی کروں، بچوں کو میں اچھی طرح سمجھا سکوں. علوم ہے 24 گھنٹے چلے، ایک دن ایک رات. اچھا موسیٰ نے کہا، یار بھوک لگی اب تو، آتینا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ارے یوشع لاؤ ناشتہ، اس سفر میں بڑی بھوک لگی، بڑی تھکن لگی ہے. پہلے چلے تھے 24 گھنٹہ تو بھوک نہیں لگی، لیکن آگے کا سفر ہو گیا غیر ضروری سفر، منزل کے بغیر کا، تو بھوک لگی. علماء نے لکھا ہے، جب انسان مقصد کو چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں میں لگے گا تو اس کا تھکنا مقدر ہے. इंसान ने मकसद चीज को छोड़ दिया और गैर मकसद चीजों में इंसान लगेगा, गैर मकसद चीजों में, तो इंसान चाहे वो बड़े बड़े मकान वाला हो, होशियार हो, अकलमंद हो, बटो बच्चों की शोर हो, उसके इज्जत हो, लेकिन मकसद को छोड़कर वो इज्जतें पायदार नहीं होती, वो इज्जत खात्मा कर लेती है। तो कहा क्या हुआ? कहा मूसा जहां आगे सोए सोए थे वहां मछली जिंदा हो गई। मछली जिंदा हो गए समंदर में चली गई और अजीब बात बत्ता पर सभी समंदर में सुरंग बनाई सुरंग, लेकिन मुझे शैतान ने बुला दिया। मूसा ने कहा यार क्या किया, कौन लगा रहे बाकी तारक हुई, यही तो हमारी तलाश थी अल्लाह के नेक बंदे की मुलाकात की, इलम देना था अल्लाह के नेक बंदे की। दोनों वापस कसस बोलते हैं कदम कदम, रोड तो था नहीं, बोर्ड पर लगे हुए नहीं थे, वही कदम पर चलते चलते 24 घंटा वापस रिटर्न हुए। वो समंदर आ गया जहां वो सोए थे, तो देखा समंदर में सुरंग बनी हुई है। दोनों चलते चलते एक था खूबसूरत जजीरा और एक अल्लाह का बंदा टू चादर ओढ़ के सोया हुआ है, नॉट इन जन। तो कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, तो जवाब नहीं दिया। ये मत बोलो ऐसे हासिल होता है, मशक्कत उठानी पड़ती है, बिल्कुल जवाब नहीं दिया। अस्सलामु अलैकुम, तो कहा अन्ना बिअब्दिकस सलाम, समंदर में कौन सलाम करता है, या तो कोई मुसलमान तो रहते नहीं। तो कहा कौन, के मूसा, तब भी चादर मुझे नहीं, ये कौन मूसा, के मूसा बिन इमरान, अच्छा अच्छा बनी इसराइल का मूसा, कि हाँ अपने आप को फना कर दिया है, यानी मुझे कुछ सिखा दीजिए हजरत। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े पैगंबर हैं इधर के मुकाबले में, मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीह इल्म है, शरीयत का इल्म, खिदर के पास तकवीनी इल्म है। तकवीनी इल्म अलग होता है, शरीयती इल्म जो अल्लाह ने हमको दिया है, मूसा बड़े नबी है। तो क्या कहा, इसलिए बड़ा इंसान भी छोटे के पास इल्म हासिल करने जावे तो छोटा बन जाए। हल अतबुका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, बिल्कुल तवाज़ुन, आप मुझे थोड़ी देर आपके पास बैठने देंगे ताकि मैं आपके पास से उलूम सीखूं जो अल्लाह ने आपको दिया है। छोटा डॉक्टर बड़े डॉक्टर के पास सीखे, छोटा टीचर बड़े टीचर के पास सीखे, तो फौरन क्या जाकर इन्नका लन तस्ततीगा मैया सबरा सख्त, इन्नका लन तस्त, तू मेरे पास नहीं रह सकता, तेरा काम नहीं है, अरे मुसब तेरा काम नहीं है, इन्नका लन तस्ततीगा मैया सबरा, तो मेरे पास ठहर नहीं सकता। कैफ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिहि खुबरा, और तू कैसे सबर करेगा मेरे पास रहकर, क्योंकि तेरी लाइन अलग है मेरी लाइन अलग है, मेरे पास तकवीनी उलूम है तेरे पास तशरीही उलूम है। हजरत मूसा ने कहा قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا, अब अन करीब मुझे सबर करने वालों में से पाओगे, जरा बराबर आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा, मेरा दाखला ले मदरसे में, चलो तेरा दाखला। लेकिन सुन, और फरीन तबाक फला तसअलनी अन शयइ हत्ता अहदीथ लक मिनहु ज़िक्रा, जब तक मैं तुझे कोई बात न बताऊं तुझे पूछना नहीं। अल्लाह ने कुरान करीम में मूसा अलैहि सलाम का तज़किरा 28 बार भी किया है, कितने बार में 28, मूसा अलैहि सलाम बड़े नबी है, मूसा अलैहि सलाम के तबलीगी सफर का भी तज़किरा किया और तालीमी सफर का भी तज़किरा किया। तालीमी सफर सिर्फ 2 बारों में, तबलीग के सफर 26 पारों में, कितने पारों में 26 पारों में। तालीमी सफर 15वें पारे का आखिरी सफर, 16वें पारे का पहला सफर, बारी पूरा तबलीगी सफर है। हजरत मूसा ने कहा ठीक है, अब दोनों चले। फन तलाका, कौन चले, मूसा और हजरत खदीर। उनको खदीर क्यों कहते हैं, कि जहां उनका हाथ और पैर लगता था वो जमीन में घास उग जाती थी, इसे उनको खदीर कहते हैं। फन तलाका, दोनों नीचे उतरे, मूसा को खाने का भी नहीं पूछा, चाय का भी नहीं पूछा, पानी का भी नहीं पूछा, ये लोग इसे नहीं मिलता, उसके लिए मुजाहदा है, कुछ नहीं। अब दोनों चले समंदर से नीचे उतरे और जहाज मिला, और वो कश्ती का मल्लाह किधर को जानता था, तो बगैर किराए के दोनों को सवार कर लिया, बगैर किराए के अत्ता इदारा की वापस सफी न थी, दोनों कश्ती में चलते रहे, किराया लिया नहीं था मल्लाह ने, कश्ती के मल्लाह ने। अब जैसे उनको उतरना था, खजीर उठे और वातन दिखा जाबिर बेग मुलाकात के बाद सब जहाज बन रहे थे कश्तियाँ, यूं करके आगे का पूरा तख्ता यूं करके फाड़ दिया हजरत खजीर ने, समझते हो ना। कहा था तू मेरे साथ रह नहीं सकता, तू चल भैया, तू मेरे पास नहीं रह सकता, तेरा दाखला नहीं होगा। क्या बोलो मैं कई बार तो कौलला तुआ कुरान पढ़ो, अल्लाह ने कुरान उलूम खोले हैं, कौलला तू आखिर नहीं बीमार रसी को बोलो भैया माफ कर दे, बस ज्यादा तंगी मत कर, तब नहीं होगा फन तरह। अब दोनों आगे चले तो आगे कुछ बच्चे खेल रहे थे, अगर खिदर ने जो बच्चा था खूबसूरत उसको पकड़ा और यूं करके उसका सब कर्म कर दिया, यूं करके बोल दिया। मूसा तो शरीयत वाले नबी थे, उनकी तो शरीयत ने चींटियों को मारने की इजाजत नहीं है, तो इंसान बच्चे को कतल, तो का कौल अकतल का नफ्सन ज़कियतन बिग़ैर नफ्स लक़द जीत शैय़अन नुक्रा, क्या किया तुमने एक जान को बगैर तकलीफ के आपने कतल कर दी, आपने बड़ा गलत काम किया है। तो का कौल इन्नक लन तस्ततिया, अरे मूसा का और सख्त हदक इधर तुझे कहा था, मैंने कहा अलम अकुल लक, अब अलम अकुल लक, अल्फाज का बढ़ना इस ज्यादा मानी की शिद्दत पर दलालत करता है। अब पीछे हजरत है, अल्फाज का बढ़ना मानी को भारी कर लेता है। मैंने तुझे कहा था कि तू बीच में बोलेगा अब मेरे साथ, अरे मूसा ने कहा भाई अब तो आइंदा अगर मैं बोलूँ तो मेरा दाखिला कर सकता, अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं गुजर के आप गुजर के कल बलख तब लदुन ने उधर आप गुजर के हद तक पहुंच चुके हैं। फिर वो दोनों चले एक बस्ती में, गांव में चले दोनों पैगंबर अलैहिस्सलाम खदीर भी मूसा भी, तो उन लोगों को कहा पहले जमाने में कोई रेस्टोरेंट होटल होते नहीं, तो बस्ती वाले आने वाले मेहमानों की मेजबानी करते थे। इन दोनों ने खाना मांगा, सबने फाबो कई युदयिफू हुमा, तमाम ने मेहमानी करने से इनकार कर दिया, क्या कर दिया बस्ती का नाम तक इंकार किया, हम नहीं खिलाएंगे। कितनी बदकिस्मत कौन होगी जिन्होंने दो नबियों को खिलाने से इनकार कर दिया। फअबौ अन युदय्यिफूहुमा, इन दोनों को मेहमानी से इनकार कर दिया। हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना है, इस उम्मत का सबसे बड़ा जालिम हो रहा है, उसने एक अच्छा काम किया है कि पुराने करीम पर जबर जेर उसने लिखे है, उसने ग्रुप को एरा उसने लिखे है, तो सारे इंतकिया वाले हज्जाज के पास आए कि थोड़ा बदल दो, कि क्या कि फअबो की जगह फअतव कर दो, कि लोगों ने मेहमानी की इनकार नहीं किया, अबो की जगह अतव कर दो, फअबो की जगह अतव कर दो। हज्जाज ने कहा हरूफ बदलना मेरी ताकत के बाहर है, कुरान के अंदर हिफाजत का वादा किया है, इनकार कर दिया। अब दोनों वहां से चले तो थोड़ा गांव के किनारे की दीवार टेढ़ी खड़ी थी, टेढ़ी टेढ़ी खड़ी थी, हजरत खजर ने दीवार को बिल्कुल सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने कह दिया इन कश्ती वालों ने बगैर किराए के सवार किया तो उन्हें तख्ता तोड़ दिया, इन लोगों ने खाना नहीं खिलाया और तुमने दीवार सीधी कर दी, कम से कम थोड़ी गुजरत दे लेता दीवार की, हमारा खाने का निजाम हो जाता। हजरत खजर ने कहा भाई हो गया कौल खादा फिरा भाई दी हो गई तोड़ दी थी कश्ती उनकी नहीं थी, ये कश्ती बेचारे गरीब लोग उसमें काम करते थे, जहाज में गरीब अक्सर काम करने वाले गरीब होते हैं, मसाकिन यामलून फिल बहर, समुद्र में काम करते कश्ती वाले, सामने एक जालिम बादशाह था, अगर वो देखता है कोई कश्ती अच्छी आती है तो जालिम बादशाह कश्ती को लूटता था वापस दे, तो मैंने कश्ती को ऐबदार बना दिया, वो ऐबदार कश्ती को लेता नहीं था, मैंने तख्ता उखाड़ के इसलिए फेंक दिया ताकि ऐबदार कश्ती को लेगा नहीं तो नुकसान थोड़ा होगा लेकिन कश्ती तो हाथ में आ जाएगी, ये बात थी। बच्चे को मैंने पकड़ क्यों किया, अम्मल गुलाब फकार अबुबा ने मेरे फकसिना, ये बच्चा था ये वालिदैन का बड़ा नाफरमान बनने वाला था और माँ बाप की मोहब्बत उसके दिल में थी और हो सकता था अल्लाह ने मुझे कहा माँ बाप उसकी मोहब्बत में काफिर हो जाते, मैंने उसको कत्ल करके खत्म कर दिया, अल्लाह उसकी जगह पर उसको ऐसे बच्चे अल्लाह का फरमाएगा जो माँ बाप के फरमा बरदार होंगे। तीसरी बात कि बस्ती वालों का मैंने खाना दीवार से बिल्कुल कर दिया, अम्मल जीदा फकान लो गुलामैन यतीमैन फिल मदीना, ये शहर की तो यतीम बच्चों की थी, यतीम बच्चों की, वकान तहतहु कंजुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा, और उस दीवार के नीचे सोने चांदी का खजाना था और इन दोनों बच्चों का बाप लेख था, तो मैंने दीवार को इसलिए सीधा कर दी कि हो सकता है अगर दीवार गिर जावे तो कबीले के लोग सोना चांदी के खजाने को लूट ले, यतीम बच्चे महरूम हो जावे, यतीम बच्चे बाद में बड़े होकर अपने खजाने को निकाल देंगे। वकान अबूहुमा सालिहा, उनका बाप नेक था, उलेमा ने कहा सातवीं पुश्त का बाप नेक था, अच्छा सातवीं पुश्त का बाप नेक था, उस सातवीं पुश्त के बाप की नेकी का असर अल्लाह ताला यहां तक लाते हैं कि इनके बच्चों के माल की सामान के अल्लाह ताला हिफाजत नबी के तरह कराते हैं। हमारे घर में जब हम ही नेक बन जाएंगे तो हमारी औलादें कितनी देर बनेगी, तो कहा वमा फअलतुहु अन अमरी, मैंने सारा का सारा काम अल्लाह के हुक्म से किया है। अदब मूसा अलैहिस्सलाम हंसते हंसते वहां से चले गए, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत की कि मूसा तुझसे भी दुनिया में बड़ा आलिम है, इसलिए शेर न माथे नवाजे, उसका आलिमी है वफोक कुल्ली इल्म अलीम, हर आलिम के ऊपर एक बड़ा आलिम है, हर डॉक्टर को एक बड़ा डॉक्टर है, हर टीचर को एक बड़ा टीचर है, आदमी को हमेशा तालीम इल्माना जिंदगी गुजारनी चाहिए। एक जगह पर हम थे हैदराबाद की जमात में, फिर साइंटिस्ट आया तो उसने प्रोग्राम किया कि इल्म को हासिल करने के अंदर आदमी को मुस्तवनी नहीं होना चाहिए बल्कि हमेशा, तो मैंने खड़े होकर कहा प्रॉफिट पैगंबर की हदीस है उद्दुल इल्म मिनल महदी इलल महदी, इल्म को हासिल करो गहवारे से लेकर कब्र तक, तो वो इतना खुश हुआ कि किसकी, हमारे नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म को हासिल करो गहवारे से लेकर कब्र तक, यानी कब्र तक स्टूडेंट बन के जिंदगी गुजारो, कभी अपने आप को टीचर नहीं, कभी अपने आप को बड़ा नहीं, जब आदमी छोटा बन के जाता है उसको इल्म मिलता है। एक बात बीच में रह गई, जो कश्ती में दोनों बैठे थे तो एक चिड़िया ही चिड़िया, और चिड़िया ने आकर बैठकर थोड़ा समंदर का अपनी बसात के मुताबिक पानी पिया, जैसे पानी पिया तो कहा मूसा देखा ये चिड़िया ने जो पानी लिया है ये मेरा और तेरा इल्म है अल्लाह के मुकाबले में, समंदर अल्लाह का इल्म है और ये इतना पानी मेरा और तेरा इल्म है, वमा उतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, तुमको नॉलेज बहुत थोड़ा दिया है, इल्म तो अल्लाह के पास है, ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफात है, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि अपने नबियों की तरबियत करता है, अपने अंबिया की तरबियत करता है, ये हमारा काम करने वाला हमारा अपनी जिंदगी तरबियत के साथ गुजारेगा तो आपका असर आपके नीचे के तबके पर पड़ेगा। डॉक्टर दिनदार बनता है तो पेशेंट दिनदार बन जाता है, कितने पेशेंट ने यूं कहा कि हम डॉक्टर की क्लिनिक में गए तो डॉक्टर साहब के चेहरे पर दाढ़ी, बैठे बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे, सलाम का जवाब दे रहे थे, तो बीमार तो आधा ही उसको शिफा हो जाती है, फिर सलाम करना, अच्छी तरीके पर अल्लाह के वादे सुनाना, ठीक करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह ही की है, ये दवा और दवा में तासीर नहीं है, तासीर तो अल्लाह ही देता है, तो डॉक्टर के जरिए पेशेंटों का ईमान बनता है, टीचर के जरिए स्टूडेंट का ईमान बनता है। अभी हम जयपुर में हमारे मौलाना गुजरा जमात में थे तो एक मौलवी साहब गुजरा ने कारगुजारी सुनाई कि हमारी जमात थी तो कुछ लोग हमारे पास कुछ स्टूडेंट आए, एक लेकर आए दो इंसान को, इनको इस्लाम कबूल करने के लिए आए हैं, इस्लाम कबूल करने, हमको इस्लाम कबूल कराओ, तो मौलवी साहब ने कहा कि हमारे दावत का उसूल है कि हम जब भी कोई इंसान इस्लाम कबूल करने आता है तो मकामी इमाम के पास उनको भेज देते हैं कि भाई मकामी इमाम के पास चले जाओ। लेकिन मैंने देखा अंदर से कि इस्लाम कबूल करने क्यों आए हैं, तो जो लेकर आए उसने पूछा कि भाई इस्लाम कबूल करने के मौलाना घबराओ मत, हमारे जयपुर में कितने लोग मेरे हाथ में इस्लाम कबूल कर चुके हैं, ये तो मैंने सुना था, जमात आई हुई है और जमात में उलमाए किराम हैं, तो मैंने दिल में ख्याल किया कि इन दोनों आपके हाथ में इस्लाम कबूल कर लें। तो पूछा कि आपको इस्लाम कैसे मिला, क्या खुद भी न्यू मुस्लिम हूँ, अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से नवाजा कि हमारे टीचर थे टीचर, और हमारे टीचर इस्लामिक स्कॉलर थे, उनकी ज़िंदगी सुंदर के मुताबिक थी, और वो जब हमको पढ़ाते थे तो पढ़ाने के बाद 5 मिनट हमें अखलाक की बात करते थे, दिनदारी की बात करते थे, दिनदारी की बात। मैं गैर मुस्लिम स्टूडेंट था तो मैं उनकी बात से बड़ा मुतासर हुआ कि टीचर क्या बात करते हैं, वे अखलाक तो हर एक को अच्छे लगते हैं, अखलाक मोहब्बत हर एक को पसंद है। तो स्टूडेंट ने कहा हजरत अब ये बात कहाँ से लाते हैं, ना कोई किताबें मिलती हैं, आज तक मैंने जितनी स्कूल की किताबें बस में कोई बात मुझे मिली नहीं, अरे बातें आप कहाँ से लाते हैं। तो कहा टीचर साहब ने मौना तारीख जमीन साहब भी आते हैं, जो छोटी छोटी क्लिप आती है अखलाक के बारे में, क्लिपों को सुनता रहता हूँ, यही बातें मैं आपको बताता हूँ कि मुझे मौलाना से मौलाना की क्लिप मुझे भी भेजो कि मुझ पर क्लिपों को आते होता है वो छोटी छोटी आते हैं 5 मिनट का 10 मिनट का, तो हजरत ने शॉर्ट जो आती छोटी छोटी मेरे पर भेजना शुरू किया मेरे टीचर ने, मेरे दिल में इस्लाम घर कर गया और मैंने कलमा पढ़ा ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम कबूल किया। देखो तबलीग का असर कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। इसके बाद जब मैंने इस्लाम कबूल किया मैं गुड टीचर बना, मैंने टीचर बनने के बाद मैंने इस्लाम की बात करना शुरू, इस्लाम एक जिंदा मजहब है, इस्लाम एक खूबसूरत तरीन मजहब है, इस्लाम में अखलाक, इस्लाम में तरबियत, इस्लाम का कल्चर, इस्लाम का कैरेक्टर क्या होता है, मेरे नबी की लाइफ, मेरे नबी की जिंदगी बताना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्कूल में 350 स्टूडेंट इस्लाम कबूल कर लिया, कॉलेज में हंगामा मच गया कि लोग इस्लाम कबूल कर रहे, तो मुझे वहाँ के लोगों ने निकाल दिया, टीचर भी था, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है आप कहा कि मुझे निकाल दो, कोई बोला ने जवाब नहीं दिया, मैंने अपना अलग से ट्यूशन चालू किया, सारे स्कूल के बच्चे मेरे पास आ गए, कितने इस्लाम। तो मौड़ा फरमाते हैं कि मैं जब गया रायगढ़ के इज्तिमा में तो हमारा तारिक जावेद साहब मिले, तो मौलाना तारिक जावेद साहब के हाथ पर सामने जब मैंने बात फरमाई तो मौलाना ने फरमाया अरे मौलवी साहब मैं क्या बात कहूँ, अल्लाह तआला ने लाखों हजारों इंसानों को इस्लाम कबूल करने का जरिया अल्लाह ने मुझे बनाया है, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं भी घुस जाऊँ, लेकिन मरकज वाले उसूल की पाबंदी पर मुझे रोकते हैं कि आप मुसलमानों में काम करो ताकि मुसलमानों का ईमान मजबूत हो जाए। एक टीचर की सही जिंदगी पर कितने लोगों को इस्लाम कबूल करने का जरिया बना है। हमारा ये मजमा अल्लाह के रास्ते की नकल व हरकत करता है तो स्टूडेंट पर असर पड़ता है, हमारे टीचर हमारे सर अल्लाह के रास्ते में जाते हैं। अच्छा डॉक्टर का क्लिनिक बने, डॉक्टर साहब कहें कि जमात में ऐसे लोग जिनके दिल पत्थर की तरह है, जिनके पास हजारों का मजमा तश्कील वाला उनके पास पहुंचा, कभी किसी से असर नहीं लिया, लेकिन एक डॉक्टर के अल्लाह के रास्ते के निकलने पर उसका दिल पलटने लगा। इतना मशगूल डॉक्टर, डॉक्टर की आमदनी भी जानता है, सुबह में इतने पेशेंट, शाम को इतने पेशेंट, तभी अल्लाह का बंदा अपनी आखिरत को बनाने के लिए सब कुछ छोड़ के जाता है। ये पेशेंट की जिंदगी बदलने का जरिया डॉक्टर की तबली का खुरूज हो जाता है। हमारा पढ़ाने का जो मजमा है ना, उनके नीचे तबका होता है, उनके जो अंदर में काम करने वाले मजमा होता है। अगर ऊपर का हमारा तबका अल्लाह के रास्ते की मेहनत करे, अल्लाह की दीन की मेहनत में लगे, तो छोटा छोटा मजमा दीन पर ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक। हमारी बुजुर्गों का एक तरीका रहा है कि पढ़े लिखे लोगों तबकों में दीन का काम अगर आ जावे, ये मजमा अकलमंदों का मजमा है, पढ़ा लिखा मजमा अगर ये मजमा अगर काम को ले लेगा इंशाल्लाह, इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला काम को आसानी के साथ दुनिया में चला देंगे। हजरत ने बात फरमाई और बात फरमाने के बाद पूछा भाई देखो हमारी जमात तुम्हारे मुल्क में आएगी, हमारी जमात तो हमारी जमात का कौन साथ देगा। तो स्टूडेंट ने तालियां बजाई, ये तालियां बजाना ईमान वाले नहीं बजाते, इल्ला मुकामन व तस्दिया, कुरान है कई जगह पर कि नारे लगाना और तालियां बजाना ये मुसलमान की शान नहीं होती, वो गैरों की शान होती है। स्टूडेंट तालियां बजाए क्या मतलब? हजरत दिल्ली वाले तुम्हारी बात नहीं सुनते, ये चंद निवासी बुड्ढे तुम्हारे पास बैठे हैं जिनको कुछ पता नहीं, जाहिल है, गवार है, नादान है, पढ़ा लिखा तबका, और आपकी जमात मुल्क में आएगी, हमारे मुल्क में आएगी, तो सबने तालियां बजाई। हजरत बड़े अजाई वाले थे, एक बार फरमाया निजामुद्दीन मरकज ने मियाँ जी बहरा रहमतुल्लाह अलैह को, मियाँ जी थोड़े ठंडे कमरे बनाओ, थोड़े गर्म कमरे बनाओ, मुल्कों की जमातें आएगी। मरकज में मजमा 30-40 का मजमा है, 3 दिन की जमात बड़ी मुश्किल से निकलती है। तो मियाँ जी बहरा फरमाते थे आते जो शबला अमामा फिटा उसका जो नीचे लटकता है, यूं करके हंसने लगा कि मौलवी जैसब का चूल्हा खिसक गया है। क्या मौलवी जैसब का? ये क्यों कहते हैं लंदन वाले आएंगे, अमेरिका वाले आएंगे, फिजी वाले आएंगे, फ्रांस वाले आएंगे। तो मौलाना को थोड़ा दिमाग का असर हो चुका है, उस अल्लाह के बंदे ने काम बड़ी हिम्मत से किया था, बसीरत ही बसीरत, दावत की बसीरत थी। अल्लाह इस मुल्क में, इस मुल्क के जरिए अल्लाह दुनिया के चप्पे चप्पे में दावत की मेहनत को खड़ा करेगा और अल्लाह इस्लाम के झंडे को लहराएगा। हजम साहब ने बात की तो एक जबूती का स्टूडेंट खड़ा हुआ कि मौली साहब अगर तुम्हारी जमात मेरे मुल्क में आएगी तो मैं आपकी जमात का साथ दूंगा। फिर उसे ताली बजाई मुल्ला साहब के सर, मजाक में कहा। अरे मुल्ला साहब हम तुम्हारे तबलीग वालों को सबर ही सीखना है, हमारे यहाँ सबर का खाना कब्र से भी भारी है। सबर से आदमी दाई की तकलीफ मदरों की हिदायत का जरिया बनती है। हजरत दुनिया से रुखसत हो चुके मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह के जमाने में 62 में छापी का इज्तिमा हुआ, वाले जमात अल्लाह के रास्ते में चली और जमात चलते चलते 62 में जमात पहुंची जबूती। और वो जो था लड़का जिसने कहा था मैं आपकी जमात की नुसरत करूंगा, वो वहां का बहुत बड़ा अफसर हुकूमत का बन चुका था। उसने कार में देखा कुछ साथी पैदल आ रहे हैं, उनके हाथ में कोटला बिस्तर है। उसे शीशा खोला, भाई तुम कौन हो, कहाँ से हो? अपनी जबान में पूछा कि हम दिल्ली से हैं। दिल्ली में कहाँ से? निजामुद्दीन मरकज से हमारी जमात आई हुई है अल्लाह के रास्ते में। उसे इस वक्त चीख मारी और ये फरमाया उस मजनून का ख्वाब सच्चा निकला, उस मजनून का ख्वाब सच्चा निकला। फिर कहा मैं महकमे का ऑफिसर हूँ, ऑफिस में ले जाऊँगा। कार से नीचे उतरा, जमात वालों की नुसरत की, मस्जिद में ले गया कि जब तक आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में आपकी जमात रहेगी, मैं आपकी जमात का साथ दूंगा। अल्लाह ने पूरे जबूती में दीन के फहराने का जरिया स्टूडेंट को बनाया जिसे सिर्फ हंसते हंसते इरादा किया था मजाक में कि मैं आपकी जमात का साथ दूंगा। एक काम बड़ा ताकतवर काम है, एक काम बड़ा पावरफुल काम है। हमारे गोधरा शहर में टीचरों में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। वो टीचर के वहां जो है प्रिंसिपल, उन्होंने देखा दुनिया का एक शोबा रखा अपने स्कूल के अंदर, रखा दुनिया का शोबा ताकि बच्चों में दीन आवे, दीनी बातें आधा घंटा पूरे महीने में या हफ्ते में आधा घंटा दुनिया का शोबा, ताकि टीचर उनके सामने या कोई हमारा जिम्मेदार दीन की बात करे। फरमाते हैं कि एक साल में वो दुनिया का परेड रखने की वजह से बच्चे बिल्कुल सुकून वाले बन गए, टीचर के अदब करने वाले बन गए, स्कूल की एक एक चीज को समझबूझ करने वाले बन गए। तो आइंदा साल फिर दरख्वास्त की कि आइंदा साल हमारे 2 दिनियात के मुस्तकिल 2 पीरियड हो जाए, 2 घंटे हो जाए। भाई वो लोग दीन के लिए तड़प रहे हैं। हमारे टीचरों का तबका और हमारे प्रिंसिपालों का तबका और हमारे डॉक्टर हजरात का तबका अगर दीन की मेहनत अपनी जिंदगी में डाले तो आपके मरकज से मजमा का मजमा भालम उठेगा। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अल्लाह के साथ रोना पड़ेगा। क्योंकि आप थोड़ी ज्यादा टीचर तो बहुत आसान है टीचरों के लिए, तो माशाल्लाह उनके तो मुस्तकिल वैकेशन पड़ता है, 10 दिन की वैकेशन होता है, समर वैकेशन भी होता है। और हमारे यहाँ के टीचर अपने स्कूलों में काम को चला, स्कूलों में एक स्टूडेंट की बरकत से मेरे जगह पर सूरत में एक बच्चे को पूछा बेटा स्टूडेंट का जोड़ था, तो कहा कि मौलाना में अपने मेरे कौन नमाज बा जमात पढ़ता है? तो स्टूडेंट ने कहा मैं नमाज बा जमात पाबंदी से पढ़ता हूँ। और फरमाया मैं जब भी नमाज का वक्त होता है मैं नमाज पढ़ता हूँ और मेरी बुनियाद पर हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स 32 बार जमात नमाज पढ़ने वाले बन गए। हमारे 3 टीचर मुस्लिम थे। देखा यार बच्चे नमाज पढ़ते हैं, तो टीचरों ने कहा आप नमाज कहाँ पढ़ते हो, आप प्रिंसिपल से बात करो नमाज की जगह, कि हम इसे बात नहीं करते, अल्लाह की जमीन पाक होती है, हम बावजू के बावजू कि हम घर से बावजू होके आते हैं, जैसे घंटा होता है फौरन हम नमाज के लिए बांध लेते हैं। तो ये 3 टीचर जो उनके सर साइंस के सर थे, मैथ के सर थे, वो तीनों के तीनों जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, अपने पढ़ने वाले बच्चों की मदद से तीनों के तीनों नमाजी बन गए और समर वेकेशन अल्लाह के रास्ते में छिंडे मिले। पायो एक काम मिकनातीस की करा है, एक काम तस्किर आलम का नुस्खा है। इस काम के जरिए अल्लाह ने लाखों लोगों की जिंदगियों को तब्दील किया है, लाखों लोगों की जिंदगी को अल्लाह ने इस काम की बरकत से बदला है। मैं एक कारगुजर अक्सर सुनाता हूँ। हम 2015 में तंजानिया में अल्लाह के रास्ते में जमात में थे, तो हम जा रहे थे कार में, हमारी जमात रिटर्न वापस आ रही थी, जा रही थी, और एक पाकिस्तान की सियालकोट की जमात पैदल जा रही थी, पैदल। तो हमने सोचा बेचारी जमात पैदल जा रही है, बूढ़े हजरात भी हैं, उनके कंधों पर गैस है, कंधों पर गैस का बोतल है और सामान भी है, सब कुछ है, पैदल बेचारे बूढ़े हजरात। मेरे भाइयों, दावत का काम आसाइश का काम नहीं है, हमारे फूलों के सिन हमारे तो कांटों के सिन है, कांटों के सिन है, कांटों के सिन है। हम तो नबी की जिंदगी को देखेंगे, मेरे आका ने किस तरह उम्मत को काम पर उठाया है। तो हमने सोचा, मेरे कभी साथियों को नाश्ता कराना, अपने पास कुछ फूल वगैरह पड़े हैं। जैसे हम नीचे उतरे, नीचे जमात ने देख लिया और वही दस्तरखान बिछा दिया, मांगरों वालों की तरह दस्तरखान ही बिछा दिया, खूबसूरत संतरे काटे, बुरताकार संतरे काटे। पाकिस्तान के लोग बड़े मेहमान नवाज होते जमात वाले, तो खाइए खाइए, तुम तो हमारे उस्ताद हो, हिंदुस्तान हमारे उस्ताद, हमारे उस्ताद, तुम्हारी बरकत से हमको तबलीग मिली, तुम्हारी बरकत से हमको दीन मिला। खैर, थोड़ा रास्ता करने के बाद कहा मुनी साहब, अब कहाँ से उनका हमारी जमात है मिला से पालमपुर से हो, तो सब खड़े हो गए, पालमपुर से। अच्छा, मनोहर साहब अली रहमत इलाके के एक छोटी सी बस्ती का एक आलिम उमर साहब पालमपुरी, दुनिया जानती है उस आदमी को। और ये फरमाया रायगढ़ के इज्तिमा में 1993 में हजरत का बयान हमने सुना था, हम सब पेंटशिप में थे। हजरत का बयान के सुनने के बाद जिंदगी हमारी बदल गई और उसके बाद से अल्लाह ने हमको अल्लाह के रास्ते में लगाया और हम 7 महीनों की जमात पैदल अफ्रीका में चल रहे। क्योंकि मुनी साहब ये मोहम्मद यूसुफ क्रिकेटर है, मुझे कहा है मोहम्मद यूसुफ क्रिकेटर है, आसमानी कदर का कपड़ा पहना हुआ और यहाँ कंधे पर गैस का चूल्हा, पूरा कंधा काला करा। मैंने कहा भाई खेले थे मुनी साहब खेलत में हूँ। मैंने कहा कितने महीनों की जमात में, 7 महीने की जमात में। मैं कहा घर कितने महीने हुए थे, 5वां चलता है। मैं घर पर फोन किया कि आज तक मुनी साहब घर पर एक फोन नहीं किया, एक फोन नहीं किया। अभी सही दरबार साहब की जमात यहाँ से रवाना होकर आगे जा रही थी, उनकी साल की जमात थी, तो मेरे पास आए थे मिलने के लिए। तो इतना मुझे कहा था तेरे बच्चे वगैरह सब खैरियत में है, मेरा घर पर मैंने आज तक फोन नहीं किया। खैर, उसे थोड़ी देर दिन का मुजाकरा होता रहा, मुजाकरा होते होते अचानक उसको उसने चीख मारी और उसके मुंह में से पानी निकल गया, सफेद पानी। इंसान पतंग अटैक तो सफेद पानी निकलता है, पूरा मुंह भर गया उसका, मोहम्मद यूसुफ का, और अचानक दशी काली हो गई। सियालकोट के अमीर साहब, उठे जमात के अमीर साहब, उसके सीने को बराबर दबाया। थोड़ी देर के बाद उसको होश आया और रोने लगा। भाई क्या रोते हो, क्या वजह बनी? कि मौलवी साहब, मैं अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तो ईसाई था, मैं तो क्रिश्चियन था, मैं तो सुअर खाता था, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, अल्लाह ने मुझे कलमा दिया, अल्लाह सही दरबार का भला करे, मेरे घर पर उसने हजारों गश्त किए हैं। मैंने धक्के मार कर उसको घर से निकाला, वो अल्लाह का बंदा बाहर खड़ा हुआ धूप में मेरे नाम लेकर अल्लाह से दुआ करता था। मैं घर में कांच में देखता था, मेरा दोस्त था, लेकिन मेरे तबलीग पर, इस्लाम की तबलीग पर उसको घर से धक्के मार के निकाला है। उसकी दुआओं ने मेरे दिल को पलट दिया है। आज मैं मुसलमान हूँ, मेरी बीवी मुसलमान है, मेरे बच्चे मुसलमान हैं, और मैं अल्लाह का कलमा लेकर अफ्रीका के जंगल में जा रहा हूँ। इस पर मैं रो रहा हूँ, अल्लाह की नेमत के शुक्राने हैं। एक काम लोगों की दिलों की जिंदगी को पलट देता मेरे भाइयों। ये पढ़े लिखों का झूठ का मतलब क्या है? दुनिया में हर एक इंसान मशगूल है, हर एक इंसान मशगूल है, अपने क्लिनिक के साथ दावत का काम करे, और अपनी तिजारत के साथ दावत का काम करे, अपनी पढ़ाई के साथ, टीचिंग के साथ दावत का काम करे, अल्लाह की दीन की मेहनत के साथ काम करोगे, अल्लाह बरकत देगा। हजरत मौलाना साहब बेवासियों को आसान विषय दे, बेवासियों, जिस गाड़ी में तुम अपने घास के चारे को सवार करते हो, जिस गाड़ी में तुम अपनी बैल को सवार करते हो, जिस गाड़ी में तुम अपने खेत को सवार करते हो, इसी गाड़ी में दावत की मेहनत को भी थोड़ी जगह दे दो, ये दावत की मेहनत तुमको जन्नत तक पहुंचा देगी। ये हमारा काम करने वाला हमारा मांगरोड़ का अतरा करो, हमारा जूनागढ़ जिले का है। आज इरादा करके जब माशा लंबी बात देखे, अब कब से बात सुन रहे हैं, बात का खुलासा जिंदगियों को बदलना है, इरादे करने हैं, मकाम पर हम गश्त करें, मकाम पर मशवरे में बैठे। हमारे जितनी भी मांगरोड़ में जूनागढ़ में बिलावल जितने हमारे स्कूलें हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, तमाम स्कूलों में दावत का काम हो, और हमारे स्टूडेंट जो हमारे पास पढ़ते हैं वो भी अल्लाह के रास्ते में इतवार के दिन एक दिन अल्लाह के रास्ते में, तीन दिन की जमातों के साथ चले, बकिया छोटा और बड़ा वेकेशन में हमारी खुद की भी तरतीब बनाए। आप देखो टीचर हजरात उनकी जिंदगी, पता न चल के टीचर है कि माशाल्लाह मौलाना है, डॉक्टर हजरात की जिंदगी देखो आपको फर्क करना मालूम पड़ेगा कि डॉक्टर साहब है कि वो मौलाना साहब है। डॉक्टर साहब मेडिकल में पढ़े, मेडिकल कॉलेज में पढ़े, वहाँ कोई अल्लाह नहीं बोला जाता, वहाँ कोई तौहीद नहीं बोली जाती। अल्लाह ने, अल्लाह तआला ने दावत की बरकत से, माना तारी जब सब क्या फरमाते हैं, मैं तो लाहौर के एक कॉलेज में पढ़ता था, मेरा बंगाली दोस्त उसका चिल्ला लगा था, पैर से माजूर था, रोज में जब किताब का मुताला करो पेंटशिप में था तो रोज आकर के मौली साहब वो जमात आई है मैंने सुना चलो थोड़ी मुलाकात मिला, मैं उसको गुस्से होकर बात करता था। एक बार लाहौर में शब जुमा यानी हफ्तावर इज्तिमा में मौलाना का बयान था किसी मौलाना का, मैंने मौलवी को कहा चल वहाँ बयान भी सुन लेंगे और बयान के बाद एक होटल में खा के भी आएंगे। तो मौलाना फरमाते खाने की नीयत से मैं तैयार हुआ, चल रहे रोजाना के अंदर दोस्त तैयार, दोस्त के साथ दोस्त चला जाता है, बस मौलाना का बयान सुना मेरे भाई। और मौलाना फरमाते सुना सुना जिंदगी पलटी, और बांग्लादेशी को तो कोई नहीं जानता, मौलाना को पूरी दुनिया जानती है। कभी कभी हमारी मेहनत से बीज इतना बड़ा हो जाता है कि बीज लगाने वाले को लोग भूल जाते हैं। कितना बड़ा बीज बना कि लाखों इंसानों की हिदायत का जरिया अल्लाह ने बनाया। मौलाना फरमाते इस बंगाली को तो कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अल्लाह उस बंगाली की मगफिरत करे, मेरा दोस्त था लेकिन आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और हिदायत का जरिया एक बंगाली मेरा दोस्त था। हमारे टीचर हमारे डॉक्टर पेशेंटों पर मेहनत करे और हमारे टीचर अपने स्टूडेंट पर मेहनत करें, बाकी जो भी तबका उनके डिपार्टमेंट में जितने भी लोग आते हैं उन पर दावत दें। एक बार हमारी कौमी बिरादरी, कौमी बिरादरी हम चिड़िया लोग हैं, हमारे होटलों का बहुत बड़ा हमारा बिजनेस है, दिल्ली से लेकर बम्बई अक्सर होटल। तो मैं एक होटल पर गया तो पान के गले वाले को मैंने कहा भाई या बहुत सारे मेवाती लोग, बहुत सारे हरियाणा के लोग मुसलमान तुम्हारे होटलों पर खाते भी है, गुसल भी करते हैं, कभी उनको दीन की दावत देते हो? कहा मौली साहब हम तो सिर्फ कारोबार करते हैं। मैं उनको दीन की दावत तो आप मौलिसा थे तो क्या उनको थोड़ा कलमा चाय पिलाओ मुफ्त में, हमारे 10 रुपये चले जाएंगे उसकी जिंदगी बन जाएगी। तो फरमाया मौलिसा ने इरादा किया, मौना फरमाते हैं कि मेरे 100 मेवातियों को कलमा सिखाया और 40 को अल्लाह के रास्ते में 4 महीनों में भेजा जो ट्रक चलाने वाले थे। एक रिटर्न हुए फिर महीने के बाद दूसरी मतलब टीप लगा कराया तो उनके चेहरे सुंदर से सजे हुए थे कि मौली साहब तुम्हारी 5 मिनट की मेहनत ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया है, ये काम बड़ा ताकतवर है। हजरत मौली साहब फरमाते थे अल्लाह ने इस काम में कुलूब के पलटने की तासीर रखी है, दिल पलटते हैं, जज्बात नेक बन जाते हैं, फिक्रें तब्दील हो जाती हैं, हमारा जिस्म अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में चला जाता है। इसलिए मेरे बाला से इरादा करो माशाल्लाह हम जिंदगी को सही गुजारेंगे, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक और अल्लाह के नबी की सुन्नतों के मुताबिक हमें मेरे नबी से इश्क हो जाए, अल्लाह के नबी से मोहब्बत हो जाए। और मेरे भाइयों अपने आंखों में हया का काजल लगाओ और अपने कानों को कुरान के नगमों से आशना करो और अपने चेहरे को हुजूर वाला चेहरा बनाओ और अपने लिबास को हुजूर वाला लिबास बनाओ और अपने हाथों में अल्लाह के इश्क की हथकड़ियाँ डालो और अपने पैरों में अल्लाह ताला की मोहब्बत की बेड़ियाँ डालो और अपने गले में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत का गुलूबंद डालो और अपने माथे में लंबे लंबे सजदे करके अल्लाह के सजदे का झूमर सजाओ, फिर देखो तुम कैसे अल्लाह के प्यारे लगोगे, अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेगा, नबी भी हमसे मोहब्बत करेगा। मतलब उसके तैयार मसाला महिमा हाँ तश्किल तो आपकी हो चुकी है, अब मकामी आमल की फिक्र को लेकर जाओ कि आज से इंशाल्लाह हमारी मस्जिद और मस्जिद जमात कर बैठेंगे, जब हम पढ़ाते हैं बच्चों पर दीन की मेहनत करके स्कूल के टाइम में कोई नमाज वहाँ नमाज को चालू कराएंगे और अपने खुद की तमाम की क्या बनाएंगे तरतीब बनाएंगे। कौन भी इरादा करता है इंशाल्लाह मैं शोले बैठूंगा, इंशाल्लाह और मैं रास्ते में बैठूंगा, अल्लाह के रास्ते पूरा बजमा इरादा करता है, अल्लाह हम तमाम को मन करने की कोशिश।